नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की समीक्षा की। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना शुरू। आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती आज से दिल्ली में 2 दिन के रोबोट प्रतिस्पर्धा डीडी रोबोकॉन इंडिया का आयोजन करेंगे। नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। महिला सिंगल्स फाइनल में आज जैस्मिन पावलिनी का सामना बारबोरा क्रेचिकोवा से और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 4था T20 क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के गोरेगांव में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेलवे और बंदरगाह परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
आज शाम करीब 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरेगांव के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर पहुंचेंगे। वहां वे थाने बोरीवली टनल प्रोजेक्ट, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग और गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बनाए गए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर किए गए प्लेटफॉर्म के विस्तार का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की भी शुरुआत करेंगे। इसके बाद शाम करीब 7 बजे प्रधानमंत्री इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय जाएंगे और वहां INS टावर्स का उद्घाटन करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजनाएं अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही हैं। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इन योजनाओं पर श्री नड्डा ने समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 34 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। इनसे लगभग 7 करोड़ से अधिक अस्पतालों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है। श्री नड्डा ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि इन दूरदर्शी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे जरूरतमंद और कमजोर वर्गों तक पहुंचे। सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लगाया था। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दिवस उन घटनाओं का स्मरण कराएगा जब भारत के संविधान को रौंदा गया था। श्री मोदी ने कहा कि ये दिन हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिसने आपातकाल की ज्यादतियों को सहा था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि जनता 25 जून 1975 की रात कभी नहीं भूल सकती जब संविधान की हत्या की गई थी।
जो निर्णय हुआ है ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी ने जैसे संविधान की हत्या की, ऐसा कभी दोबारा ना हो। ये बहुत देश के लिए जरूरी है, संविधान के लिए जरूरी है। और डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को, उस संविधान का रक्षा करना हम सबका दायित्व है।
7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना हो रही है। इन सीटों पर बुधवार को मतदान हुआ था। इसमें पश्चिम बंगाल में 4, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 2, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब की 1-1 सीट शामिल है। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 332 मतदान केंद्रों में मतदाताओं द्वारा ईवीएम में डाले गए मतों की गणना के लिए 17 टेबल और पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए 4 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना लगभग 20 चरणों में पूरी होगी। अमरवाड़ा में 10 जुलाई को हुए मतदान में 78% से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले थे। यहाँ कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के कमलेश शाह और कांग्रेस के धीरन शाह इनवादी के बीच है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है।
हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई है। प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में 10 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना पूरी होने के तुरंत बाद आज चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। इन चुनाव परिणामों से 3 विधानसभा क्षेत्रों में 13 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होगा। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
महाराष्ट्र विधान परिषद के 11 सीट पर कल हुए चुनाव में महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। महाविकास अघाड़ी के 3 में से 2 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। द्विवार्षिक चुनाव में 12 उम्मीदवार मैदान में थे। कुल 274 विधायकों ने इसके लिए मतदान किया। भाजपा के 5, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 और शिवसेना के 2 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। महाराष्ट्र में कई नगर परिषद और नगर पंचायतों के उपचुनाव के लिए 11 अगस्त को मतदान होगा। नामांकन पत्र भरने का काम 18 से 24 जुलाई तक चलेगा। 25 जुलाई को पर्चों की जांच होगी और मतगणना 12 अगस्त को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली और प्रसार भारती आज से दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिन के रोबोट प्रतिस्पर्धा DT रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन करेंगे। एक रिपोर्ट।
DD रोबोकॉन इंडिया में देश भर से 45 से अधिक कॉलेज, संस्थान और विश्वविद्यालयों के 750 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। प्रतिस्पर्धा में रोबोट निश्चित समय सीमा में जटिल कार्यों को पूरा करेंगे। विजयी टीम वियतनाम के क्वान निन्ह में अंतर्राष्ट्रीय एशिया प्रशांत प्रसारण संघ रोबोकॉन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ये इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के बीच तकनीकी कौशल विकास, नवाचार और टीम वर्क को बढ़ावा देता है। इससे विद्यार्थियों की इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स क्षमताओं को प्रदर्शित करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मंच मिलेगा। IIT दिल्ली के प्रोफेसर SK सिन्हा ने इस प्रतिस्पर्धा के आयोजन के लिए प्रसार भारती का आभार व्यक्त किया है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने नैनी परियोजना से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान के लिए कल ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से मुलाकात की। ये राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिंगरेनी कोलियरीज लिमिटेड के लिए महत्वपूर्ण है। नैनी परियोजना में सिंगरेनी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उपमुख्यमंत्री ने इन मुद्दों पर ओडिशा के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। बैठक में वन भूमि के हस्तांतरण के लिए जल्द मंजूरी हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही बैठक में पेड़ों की गिनती, बिजली लाइनों का पुनर्निर्माण और सिंगरेनी द्वारा प्रस्तावित बिजली संयंत्र के लिए भूमि आवंटन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन 26 जिलों के 2,500 से अधिक गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। राज्यभर में 39,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलें नष्ट हो गई हैं। ब्रह्मपुत्र, बूढ़ी दिहिंग, दिसांग और कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
मौसम विभाग ने असम, मेघालय, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कल तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी आज और कल भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, मराठवाड़ा और तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुई। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 4,669 तीर्थयात्रियों का जत्था आज सवेरे रवाना हुआ। इनमें से 1,630 यात्री बलताल के लिए और 3039 यात्री पहलगाम के लिए रवाना हुए। कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक प्राचीन मंदिर को 34 वर्ष बाद फिर खोला जा रहा है। वर्ष 1990 में कश्मीर घाटी में अशांत परिस्थितियों के कारण इसे बंद कर दिया गया था। क्षेत्र की स्थानीय मुस्लिम आबादी के सक्रिय सहयोग से ये मंदिर कल फिर खुल जाएगा।
मंदिर परिसर में मां उमा भगवती की स्थापना के अलावा पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। बरारे आंगन में उमा भगवती मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, जहां जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में भक्त आते थे। देवी कश्मीरी पंडितों की इष्ट देवी है और हर साल कई दिनों तक यहां एक भव्य धार्मिक समारोह आयोजित किया जाता था। इस मंदिर की बहाली के साथ ही ये भव्य मंदिर अब 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कल अष्टमी के शुभ अवसर पर भक्तों के लिए खोला जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल।
और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज जैस्मीन पाउलिनी का सामना बारबोरा क्राइजिकोवा से होगा। सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की क्राइजिकोवा ने कजाकिस्तान की एलिना राबाइकिना को हराया था। वहीं इटली की पाउलिनी ने क्रोएशिया की डोना वेकिच को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी। इस बीच सर्बिया के नोवाक जोकोविच और मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में कल जोकोविच ने इटली के लोरेंजो मुसेट्टी को लगातार सेट में 6-4, 7-6, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। अल्काराज ने रूस के डेनिल मेदवेदेव को 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। इस बीच भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। शुभमान गिल के नेतृत्व में पहले मैच में भारत को जिम्बाब्वे से 13 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारत ने अगले दोनों मैच जीतकर श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली थी। श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच हरारे में कल खेला जाएगा। उधर भारत की सबीरा हैरिस ने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा का कांस्य पदक जीत लिया है। फाइनल में कल सबीरा ने 40 में से 29 सटीक निशाने लगाए।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्राची प्रिया।
शुक्रिया विमलेंदु। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने की केंद्र की अधिसूचना अखबारों की बड़ी खबर है। अमर उजाला का कहना है, इसी दिन देश में लगा था आपातकाल, केंद्र के फैसले से सरकार और विपक्ष में जंग और तेज। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाला सवाल बड़ी बेंच को रेफर, सीबीआई वाले केस में फिलहाल जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। वर्ष 2008 में संसद से पारित ग्राम न्यायालय अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, ग्राम न्यायालय से किफायती न्याय तक पहुंच होगी सुनिश्चित, निचली अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामले में आएगी कमी। हिंदुस्तान का कहना है, मई में औद्योगिक उत्पादन 5.9% बढ़ा, खनन और बिजली क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के कारण उच्चतम स्तर पर पहुंचा औद्योगिक उत्पादन, अनूठी पहल शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने जापान के यामागाता प्रिफेक्चर में नए कानून का उल्लेख करते हुए लिखा है, अब दिन में एक बार खिलखिलाकर हंसना जरूरी, सजा का प्रावधान नहीं फिर भी विरोध, कई लोग पहले से ही मुस्कुराहट लाने के लिए स्माइल कोच की मदद ले रहे हैं। हिंदुस्तान कुछ अलग शीर्षक से लिखता है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की चादर से कीड़े नहीं फटेंगे पास, डिफेंस रिसर्च लैब की नई तकनीकी सैन्य बलों, रेलवे और होटल आयोग के लिए उपयोगी।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की समीक्षा की। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना शुरू और आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती आज से दिल्ली में 2 दिन के रोबोट प्रतिस्पर्धा डीडी रोबोकॉन इंडिया का आयोजन करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।